सदैव यही रहना चाहिए कि एक बाप दूसरा न कोई, नहीं तो ऊंचे तो ऊंचे भगवान क्यों कहा जाता है? माने तो माने भगवानों की जो लिस्ट है वो भी ऊंचते ऊंचे और नीचते नीच भी है
नहीं
नहीं, नहीं है। फिर ऊंचते ऊंच कहने का मतलब क्या है?
भगवान तो एक ही को कहा जाता है,
एक ही होता है, लेकिन दुनिया में भगवानों की लिस्ट कितनी है?
अनेक
भगवान के जितनी आत्माएं उतने भगवान बना दिए, तो ऊंचते ऊंच भी तो कोई एक होगा, वो एक है और बाकी सब निश्चित नहीं।
इतना बड़ा इतना विस्तार से जो ज्ञान है ये सिर्फ टाइम पास के लिए,
टाइम पास करने के लिए। अच्छा, हमारे समझने समझाने के लिए नहीं है?
समझने समझाने के लिए है,
ये टाइम पास हो रहा है, मस्ती मार रहे हैं।
नहीं बाबा, ऐसा नहीं, हमारा बुद्धि जैसा कहा जाता है
इतना, इतना विस्तार का जो ज्ञान है वो सब बेकार है।
नहीं, बेकार नहीं है,
जो आत्मा विस्तार में नहीं जा सकेगी वो आत्मा उतने सार में भी नहीं टिक सकेगी। जो आत्मा जितना जास्ती सार में टिकने वाली होगी उतने ही जास्ती विस्तार में जाने वाली। जैसे बरगद का वृक्ष, उसका बीज जितना सार रूप होता है, छोटा होता है, सूक्ष्म, उतना ही वृक्ष
बड़ा होगा। अगर प्रश्न ही नहीं पूछेंगे तो सागर मंथन गायन नहीं आता था ना?
कौन मना करता है तुम प्रश्नों की पूछ मत निकालो?
नहीं भाई, कह रही है ना,
काटने वाला जब बैठा हुआ है तो खूब निकालो, हनुमान की तरह टंडीला चाप।
नहीं बाबा, वो बात के लिए नहीं पूछा।
अरे
दिल दिमाग को जब खाली रखेगा
है,
दिल दिमाग को जब खाली रखेगा तो भूतों का प्रवेश होगा।
एक दिमाग को खाली रखेगा तो भूतों को प्रवेश, वो तो भूत प्रवेश करके ही प्रश्न कराते हैं। जो बाप के बच्चे हैं असल में, जो असल सूर्यवंशी है, उनको प्रश्न आते ही नहीं, वो कहते हैं जो बोला सत्यवचन महाराज, उन्हें प्रश्न आते ही नहीं होंगे कितनी भी कोशिश करें।
तो अभी सिर्फ बता है जितना भी सूक्ष्म होते हैं जो
सूर्यवंशी है वो अति सूक्ष्म कोटि के पहले से ही है ऑलरेडी, उनमें कोई भूत प्रवेश कर ही नहीं सकता।
बाबा जो पूछते पूछते उनमें भूत प्रवेश,
अरे जब जब
बाप कहते उनमें भूत प्रवेश,
बाप कहते मैं अपने आप ही आकर के सब कुछ बताता हूँ। जब बाप सब कुछ अपने आप ही टाइम पर बताते हैं तो बच्चों को पूछने की दरकार है? लेकिन कोई को तसल्ली नहीं होती है, अनिश्चय ज्यादा बढ़ता है तो पूछने के लिए मजबूर हो जाते हैं।
तसल्ली का बात नहीं कर रहा, बाबा तो बता के हो गया
है,
बाबा तो जो बात है वो समझा दिया, फिर वो टाइम में वो आत्मा की बुद्धि में नहीं बैठा होगा इसलिए पूछा।
तो समझने के लिए उस समय पूछने के लिए मना कर दिया क्या?
नहीं, समझने के लिए पूछा था।
तो समझने के लिए उसी समय प्रश्न के ऊपर प्रश्नोत्तर करते चले जाओ, मना थोड़ा ही करते हैं। ये तो एक ही सभा ऐसी है जहाँ पूरी सभा के बीच में प्रश्न और उत्तर करने के लिए रेडी है बाप,
तैयार बैठा है,
और झिझकता भी नहीं है, घबराता भी नहीं है कि अरे शास्त्र पढ़ लें फिर हम जवाब देंगे एक्यूरेट, तुरंत का तुरंत जवाब हाजिर है। हाँ, कभी कोई प्रश्न ऐसा होता है जो अभी जवाब नहीं देना है, ड्रामा के अनुसार अभी जवाब देने से नुकसान हो सकता है, तो अभी न जवाब देके आगे जवाब दे देंगे।
ये भी पता है कि प्रश्न पूछते हैं ना, तो बाबा को जब प्रश्न पूछते हैं तो अच्छा जो अच्छा अच्छा जवाब आता है बताए, उनसे सबको फायदा ही होता है।
माना उनके कुल वाले जो होंगे, प्रश्न पूछने वालों के कुल वाले जो होंगे उनको तो फायदा होगा।
बाबा अभी कॉल नहीं पूछेगा,
वही नहीं फिर भी पूछेगा।
पूछना अच्छा ही नहीं पूछना अच्छा है, पूछना अच्छा ही नहीं पूछना अच्छा है।
अगर प्रश्न अंदर आता है कचरा,
वो कहना बोल सकते,
पेट में कचरा आ गया है तो कचरा बाहर निकालना अच्छा है या अंदर ही रखना अच्छा है? अगर अंदर ही रखा और नहीं निकाला तो दिमाग खराब करता रहेगा। ये स्थूल पेट में भी कचरा भर जाता है, अगर नहीं निकालता है तो क्या होता है? जो बुद्ध रूपी पेट है ऊपर वाला वो भी खराब होने लगता है। ऐसे नहीं करना चाहिए, बाप कोई ऐसे नहीं कहते हैं कि मत पूछो, कोई बात आती है तो बाहर निकलो, हाँ पूछ कट जाए तो देवता बन जाएंगे।
पूछना भी है फिर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना भी है।
हाँ जी हाँ जी,
यमुना के कंठे पर स्वर्ग स्थापन होता है।
यमुना के कंठे पर स्वर्ग स्थापन होता है। हाँ जी,
यमुना यमुना तो मुस्लिम धर्म का बीज है।
तो क्या हुआ
तो,
अरे कुत्ता जाता है कि नहीं स्वर्ग में?
हाँ कुत्ता
अलग है, डकैत अलग है।
मुसलमान है डकैत,
कुत्ता डकैत नहीं है।
कुत्ता है पहले वाला,
हाँ
पहले वाला।
क्या पहले वाला?
काली कुत्ता इस्लाम।
हाँ
मुसलमान है
जो पांच विकार है चोर डकैत, उनमें बड़ा डकैत कौन है?
बाबा
चलो
सर्व स्थापन करने के लिए उनका एक जो गया सर्व स्थापन करने के लिए,
हाँ
उनका एक जो यमुना के कंठे पर।
अच्छा, रक्षा वो सुरक्षा करने के लिए, रात में घर की रखवाली करने के लिए कुत्ता चाहिए कि नहीं चाहिए? तो अच्छा कुत्ता चाहिए ना, बुलडा
है ना, वो इस्लाम धर्म का बीज है।
हाँ जी, वफादार कौन होता है? मनुष्य वफादार होते हैं या कुत्ते ज्यादा वफादार होते हैं? तो वफादार चाहिए नई दुनिया की स्थापना में या नहीं चाहिए? चाहिए।
वो कहाँ वफादार होते हैं बाबा? तो सरेंडर होकर के दो महीने भी नहीं निभाए।
क्या
दो महीने
जब तक भी निभाते हैं वफादारी से निभाते हैं या नहीं निभाते हैं औरों के मुकाबले? तो फिर अगर नहीं निभाते होते तो उनके उस गुण को छोड़ देते भगवान, उसी गुण को देख करके उनको क्यों उठाया? कुत्ता सब कुछ छोड़ देगा लेकिन अपनी वफादारी
नहीं,
वफादारी नहीं छोड़ेगा। तो जिसमें जो गुण है उस गुण को ही आगे बढ़ाओ।
बिना शरीर कितना समय, मैक्सिमम कितना समय तक रहता
है? बिना शरीर के आत्मा कितना समय रह सकता है?
मतलब प्रेत आत्मा,
प्रेत आत्मा को तो शरीर होता है,
सिर्फ आत्मा कितना समय तक रहता है बिना शरीर?
बिना शरीर के आत्मा परमधाम में ही रहती है।
नहीं,
हाँ सूक्ष्म शरीर के बगैर,
सूक्ष्म शरीर,
बिना सूक्ष्म शरीर बिना स्थूल शरीर के आत्मा कितना समय रह सकती है ये पूछ रहे?
नहीं,
सूक्ष्म शरीर में कितना मैक्सिमम रह सकता है?
सूक्ष्म शरीर के साथ मैक्सिमम सैकड़ों वर्ष तक भी रह सकती है, लेकिन संगम युग में नहीं।
है? जो पतित से पावन होते हैं वही बाप को बार बार जुलाते हैं, भक्ति में और ज्ञान में दोनों में।
जो पतित से पावन बनते हैं वो पतित पावन सीताराम को
बार बार बुलाते
बुलाते भी हैं,
ज्ञान में और भक्ति में दोनों में।
ठीक है,
और ये भी बोला है कि जो बाबा बाप से दूर है, जन्म जन्मांतर बाप से दूर है, वो बाप को बुलाते हैं बार बार। जो जन्म जन्मांतर नजदीक है वो एक बार देखे तो भी वो अच्छी रीति से याद करे तो बताएं।
तो
मैं दोनों में अंतर क्या?
जन्म जन्मांतर के नजदीक रहने वाले हैं, संगम युग में आकर के वो पहली बार बाप से मिलते हैं, तो उनको एक बार का देखा हुआ पक्का याद आवेगा या नहीं आवेगा? पहले दोबारा तिवारा देखे या न देखे याद आवेगा। और पूर्व जन्मों में जिन्होंने बहुत कम संग लिया है,
दूर
रहे हैं, लेकिन बाप को इस जन्म में आके देख लिया है, नजदीक आ गए, तो उनकी बुद्धि बाहर भागेगी या बाप में भागेगी?
बाहर।
पूर्व जन्मों के अनुसार कोई वैश्य है इस जन्म में आके ब्राह्मणी बन गई, तो ब्राह्मणी बनने के बावजूद भी वो माया बेटी की बुद्धि बाहर की दुनिया में भागेगी, बाहर की दुनिया वालों के साथ रहेगी या बाप के साथ ज्यादा रहेगी?
बाहर
दुनिया वालों के साथ ज्यादा, फिर भी आकर के वैश्या बन जाएगी।
मतलब मैंने वो ज्यादा संकर हम लेना चाहते हैं बताए जो जन्मांतर दूर है वही बार बार बाप को बुलाते हैं देखना चाहते हैं
संकर जन्मांतर दूर है वो देखना चाहते
हैं संकर हम लेना चाहते
हैं अगर दूर रहे हैं लगातार तो उन्होंने बाप को बुलाया कहाँ पूर्वजन्म में भी तो बुलाया होता है पूर्वजन्म में भी तो नसीब पहुंचे होते जिनको यहाँ बुलाने की बार बार इच्छा होती है तो इससे साबित क्या होता है कि पूर्वजन्म में वो नजदीक रहे हैं यहाँ संकल्पों का क्रम चलता है और वहाँ स्थूल क्रम चलता है यहाँ संकल्पों से जो नजदीक है वहाँ स्थूल में वो नजदीक रहे होंगे
मैंने ये बोला है कि जो जो एनएस में जो है आश्रय जो है
वो अरे एनएस में तो सब तरह के हैं जो 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 किसी घर का फाउंडेशन डाला जाता है तो फाउंडेशन में नीचे पत्थर डाले जाते हैं छोटे बड़े मजबूत कच्चे पक्के तो जब दुर्ग से खुटाई होती है धुनाई होती है तो कुछ इधर सिखरक जाते हैं कुछ इधर खिसक जाते हैं कुछ गहराई में चले जाते हैं कुछ इतने मजबूत होते हैं ऊपर ही बने रहते हैं टूटते भी नहीं
माना बाबा
तो फाउंडेशन में तो सब तरह के हैं ऐसे नहीं कि उसमें राजाएं हैं सब नहीं प्रजा वर्ग के भी हैं दास दासी बनने वाले भी हैं चांडाल बनने वाले भी हैं वो तो फाउंडेशन है
मेरा प्रश्न ये है कि जो एनएस में जो है वो बाप को देखना बार बार देखना नहीं चाहते संकरण लेना नहीं चाहते वो
हाँ ये तो है
सेवा में भी लगे रहते हैं
उनकी बुद्धि में अगर किसी की बुद्धि में ये बैठ जाए सेवा से ही फायदा है क्या
सेवा से
फायदा है और कंधे पर चढ़े रहने में फायदा तो अच्छी बात है या खराब बात है
अच्छी बात
है अरे दुनिया में भी कहते हैं काम प्यारा है माँ बाप को या चाम प्यारा है चाम माने चमड़ी
काम प्यारा है
कोई बच्चा देखने में बहुत खूबसूरत हो सुंदर हो और काम कुछ ना करे घर में ही पड़ा रहे और ही तंग दुखी परेशान करता रहे वो ज्यादा प्यारा लगेगा और या कुरूप पैदा हुआ है और सारा दिन दुकान संभालता है और अच्छे तरीके से संभालता है वो ज्यादा प्यारा लगे ऐसे यहाँ भी है बाप को सबसे बड़े बच्चे प्यारे हैं
सभी से बड़े बच्चों को बाप को बार बार देखना नहीं चाहते क्या संकरंग नहीं लेना चाहते
सबसे बड़े बच्चे तो अव्यक्त स्टेज में स्थित हो जाएंगे जल्दी
बाप उनको याद करते
हाँ बाप उनको याद करे बच्चे याद करें या न करें लोग तो हमेशा सामने ही रहेगा जिसका काम करेंगे वो सामने नहीं रहेगा
रहेगा
रहेगा और असली पूछा जाए तो मिनी मधुबन में सब जितने भी हैं चाहे अंडरग्राउंड चाहे सरेंडर्ड हैं चाहे नॉन सरेंडर्ड वो बार बार उनकी इच्छा होती है बाबा को देखें बाबा की मुरली सुने बाबा के नजदीक रहें क्या बाबा से दृष्टि लें इच्छा होती है कि नहीं होती है लेकिन उनको ये कोई बात नहीं है कभी वो ये उलहना नहीं देते हैं कि हमको दृष्टि क्यों नहीं आकर के देते सबको दृष्टि देते हमको डायरेक्ट मुरली आके क्यों नहीं सुनाते सबको सुनाते हमारे नजदीक आकर के क्यों नहीं रहते ज्यादा दिन और मिनी मधुबन में क्यों चक्कर काटते रहते तो इसे अपूर्ण स्टेज की ओर कहें या संपन्नता की स्टेज के नजदीक कहें
बाबा बताए ना बाबा दृष्टि से विकर्म विनाश नहीं होते
दृष्टि अंदर की दृष्टि से हमेशा याद रहे वो ज्यादा अच्छा या इन आंखों से देखता है ज्यादा
अच्छा अभी टाइम है क्या अभी
टाइम तो 10 मिनट पहले ही हो चुका जब कोई नहीं बोलता है तो क्लास अपने आप बंद हो जाता है तुम बोलते रहते हो तुम चैलेंज क्या रहते हो टाइम है क्या आ जाओ
ऐसे नहीं बाबा
ऐसे नहीं कैसे
नहीं अगर बाबा को टाइम वेस्ट किया तो भोजन लगता
है बाबा को कहाँ टाइम खत्म है
तो टाइम है तो पूछना है नहीं तो टाइम
बाबा तो कभी कभी होता है
ना ये पूछने से गलती है क्या टाइम है क्या
नहीं
तो बाजी नहीं लगा रहे
पूछो 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 पूछो
जाइए बाबा,
जाइए क्यों जाइए,
मैं तो बात ही नहीं लगा रही
है। नहीं करो बात,
फिर आप बोल रही है हाथ मिला नहीं।
इसका मतलब बाप भी टाइम के बंधन में है।
नहीं
है, बंधन में है।
नहीं
आज का प्रातः क्लास है 4 अप्रैल 1968। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं और समझाते समझाते पारस बुद्धि बनाते हैं, ये भी समझ की बात है ना। ये लक्ष्मी नारायण भी पारस बुद्धि तुम्हारे सामने बैठे हैं ना। तुम जानते हो हम ये थे, अथवा इनके कुल के अथवा राजधानी के थे। यहाँ जब आते हो तो निश्चय रहता है, अपने गांव में रहते हो तो इतना नशा नहीं रहता है जितना यहाँ रहता है। बाप समझाते हैं, तुमको याद है या भूल गए हो, जिसने ये पद प्राप्त कराया उनका नाम भी बहुत रख दिया। बाबा भी कहते हैं, सलोना मासूक भी कहते हैं, आधा कल्प तुम उनको याद करते आए हो। बाप आकर के उस आधा कल्प की याद को मिटाते हैं। वो भक्ति मार्ग की याद है। अभी तो सामने आकर खड़े हो जाते हैं। बच्चे भी ये जानते हैं, ज्ञान सागर हमको पढ़ाते हैं। पढ़ाने वाला कोई देहधारी नहीं है, जिसकी बुद्धि देह में धरी हुई हो, आत्मा ही सुनती है, परमात्मा सुनाते हैं। आत्मिक बुद्धि होकर के सुनना है। और ये है ही रूहानी नॉलेज, एक ही बार ये रूहानी नॉलेज मिलती है। कितनी अच्छी नॉलेज है, सारी सृष्टि के आदि में जंतु को जानते हो। बाप की जो इतनी महिमा गाते हैं तो जरूर आकर के बच्चों को सिखाया होगा, तब तो महिमा करते हैं। तुम जानते हो बाबा सामने बैठा है। भक्ति मार्ग में सामने तो होता नहीं। अभी हम अपना घर बार छोड़ करके बाबा से मिलने आए हैं, बाबा से फिर से देवी सुराजी का वर्षा लेने आए हैं। रजिस्टर भी तुम भरते हो तो उसमें भी लिखना चाहिए, बेहद के बाप से बेहद की बादशाही का वर्षा मिलता है। वो वर्षा पाने के लिए, रिफ्रेश होने के लिए हम आए हैं। ये लिखने में भी समझ चाहिए और देखना चाहिए क्या क्या लिखते हैं। लिखत ऐसी हो जो कोई भी आए रजिस्टर देखे तो समझे कि ये बेहद के बाप के बच्चे हैं। बेहद के बाप से वर्षा लेने के लिए आए हैं, रिफ्रेश होकर के चले जाते हैं। लिखने से ही समझ जाए बरोबर इनों को पढ़ाने वाला बेहद का रूहानी बाप आया हुआ है। ये भी तुम बच्चे समझते हो, सारे कल्प में बाबा एक ही बार आते हैं। ये जिनकी बुद्धि में रहता है, स्मरण करते हैं, उनको खुशी भी होगी। कईयों को तो माया एकदम भुलाई देती है। यहाँ से घर में गए, मित्र संबंधी आदि देखे तो बस सारा ही नशा हो जाता है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, कोई तो इसी धंधे में ही लग जाते हैं, इसलिए ये मधुबन गाया हुआ है। तुम बच्चों ने समझा है मधुबन किसको कहा जाता है, ये क्या है, फर्क तो बहुत है ना। यहाँ तुम प्रैक्टिकल में बाप के आगे बैठे हो, नंबर बार खुशी भी रहती है, बाप मिला बस, दूसरी तो कोई चीज मीठी नहीं लगती। बाप कितना सुख के साधन बताते हैं, ऐसे बाप को तो बहुत याद करना चाहिए। और ये बाप कोई अपनी बड़ाई नहीं करते हैं, बाप तो समझाते हैं मुझे याद करो। जो समझाने वाला है वो कोई देहधारी नहीं है, वो विदेही है। अभी तुम बच्चे समझते हो कि हमको वेद का बाप पढ़ाते हैं, बाप कहते हैं मैं इस तंदारा तुमको पढ़ाने आया हूँ। तो ये रथ है ना, जैसे तुम्हारा अपना अपना रथ है, परंतु उनका तो अपना रथ नहीं है, वो है शिव, उनकी आत्मा का ही नाम शिव है, उनका अपना शरीर होता नहीं। तुम शालिग्राम हो, बाप और बच्चे, तो उनकी ही महिमा है। सृष्टि के आदि मध्यंत को भी जानते हैं, कहते मैं सतम द्वारा सृष्टि के आदि मध्यंत का राज समझाता हूँ, शिवाय ज्ञान सागर बाप के और कोई पढ़ा ही नहीं सकता है। टीचर को तो कब भूलना नहीं चाहिए, सर्विस करने के लिए भी बाप समझाते हैं, बाप का परिचय देना है, बाप ही पतित पावन है, आत्मा और परमात्मा का मेला, ये बड़ा भारी मेला है। जबकि परमात्मा आकर के बच्चों को पढ़ाते हैं, ये भक्ति मार्ग की तो बात ही अलग है, वहां तो मेले लगते ही आते हैं। ये मेला तो एक ही बार का है, फिर ये मेला 5-4 वर्ष के बाद लगेगा। भक्ति मार्ग में तो बहुत झंझट, कितना माथा मारना, रोना पीटना होता है, कितने गीत गाते हैं रिझाने के लिए, कृष्ण को रिझाए, शंकर को रिझाए, शंकर को रिझाए, हनुमान को रिझावे, यहाँ तो किसको रिझाने की बात ही नहीं है, ये तो पढ़ाई है। टीचर के डायरेक्शन पर चलना होता है, नहीं चलेंगे तो जरूर नापास हो जाएंगे, ये तो कॉमन बात है। वो हद का स्कूल, ये है बेहद का, पढ़ते भी तुम कैसे साधारण हो, नीचे पट्टे में बैठ करके पढ़ते हो, म्यूजियम में जाते हैं ऐसे नहीं जूता उतार करके जाते हैं, नहीं, अरे ये तो पढ़ाई है, भले जूता पड़ा रहे। भक्ति मार्ग में तो देवताओं के आगे जूता पहनकर नहीं जाते, परंतु ये तो पढ़ाई है, पढ़ाई में जूता नहीं उतारा जाता है, जूता भक्ति मार्ग में उतारा जाता है। म्यूजियम में कोई जावे और जूता उतार करके बाहर जूता उतार करके जावे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, कोई चोरी कर ले जावेगा। 4-4 अरसठ की वाणी का दूसरा पेज, तो ये पढ़ाई देखो कैसी वंडरफुल है। बाप बच्चे बच्चे कहकर के समझाते रहते हैं, ऐसी तुमको टेव पड़ी हुई है, सभी को बच्चा बच्चा कहते रहेंगे, ये तेव रहने से कब कब मैं भी बाबा बन जाता हूँ। ये हमारे बच्चे हैं, किसने बोला? मैं भी बाबा बन जाता हूँ, किसने बोला? ब्रह्मा ने बोला। अपन को भाई नहीं समझता हूँ, वो आदत निकलती जाती है, बच्चा बच्चा ही कहता है। तो बाप बन गया ना, फिर भी संबंध नहीं रहता है, इस दुनिया से कोई संबंध नहीं है इनका। मैं तो वहां का रहने वाला हूँ, आता भी हूँ पढ़ाने के लिए, और मैं करते ही मैं जाता हूँ, मैं हो जाता हूँ। पढ़ाई की भी खुशी होती है, रहम भी आता है, समझाता हूँ मीठे बच्चों, औरों का कल्याण करो, सिर्फ मंत्र देते रहो। गुरु लोग मंत्र देते हैं, घर में बिठाए थोड़ी देते हैं, इतने लाखों फॉलोअर्स होते हैं, सभी उनके घर में रहते हैं। रहते तो नहीं है, रहते हैं क्या? अपने अपने घर में रहते हैं, मंत्र लेकर के अपने घर में चले जाते हैं। वो तो सभी है भक्ति, परंतु इस ज्ञान से तो सदगति हो जाती है। भक्ति भी आधा कल्प चलती है, ज्ञान भी आधा कल्प चलता है। अभी तुम जान गए हो नम्रवार पुरुषार्थ अनुसार, अभी तो तुमको भक्ति का नाम भी नहीं सुनना होता है। बाप कहते हैं ये झूठी वाहियात बातें अभी तुम नहीं सुनो, क्योंकि भक्ति मार्ग घोर अंधेरा मार्ग है, ये धक्का खाने का मार्ग है। सत्युग में तो धक्के खाने की बात ही नहीं, इसलिए भक्त लोग भगवान को याद करते हैं, बाबा हमको भक्ति का फल दो। भक्ति का फल है ज्ञान, और ज्ञान का फल है विश्व की बात सही। फिर ये रावण राज्य खलास हो जाता है। इतने समय हम रावण राज्य में थे, इसलिए हर वर्ष रावण को जलाते जाते हैं। सत्युग में तो रावण होगा ही नहीं। भस्मासुरी, अकासुरी, बकासुरी, सब नाम आसुरी संप्रदाय के हैं, वहां ये नाम होते ही नहीं। बच्चों ने भी ज्ञान और भक्ति को समझ लिया, भक्ति अभी खलास हो जाती है, क्योंकि भक्ति में कोई सुख नहीं है, अल्पकाल का सुख है। कृष्ण को देख लिया, बस समझते हमने भगवान को पा लिया, फिर तो कृष्ण ही कृष्ण करते रहेंगे। कितने प्यार से बैठ याद करते हैं, परंतु रिजल्ट क्या होता? होता तो कुछ भी नहीं। जब तक बाप ना आकर के समझावे, तब तक दुनिया पलट नहीं सकती। बाप कहते हैं तुम पाप आत्मा हो, फिर कृष्ण को याद करने से फायदा क्या होगा? पहले पुण्यात्मा तो बनो, तब ही तो कृष्ण जैसे बन सकते हो। सबसे फर्स्ट क्लास है शिव बाबा की अब बेविचारी भक्ति। भक्ति ही अगर करनी है तो कौन सी भक्ति फर्स्ट क्लास है? शिव बाबा की अब बेविचारी भक्ति, और वो होते ही है द्वापर के आदमी। अभी तुमको मिलता है, फिर उसके बदले में अभी विचारी ज्ञान। जिन्हों जिन्होंने अभी विचारी भक्ति की होगी, वो ही अभी विचारी ज्ञान उठाते हैं। अभी विचारी भक्ति नहीं की होगी तो ज्ञान भी विचारी उठाने लग पड़ते हैं। एक से ज्ञान लिया जाता है, उसको कहते हैं आप भी विचारी ज्ञान। बाप समझाते हैं ये वो ही गीता है, लिखते भी हो। बाप जब आकर के गीता सुनाते हैं तो हम स्वर्गवासी बन जाते हैं, और मनुष्यों द्वारा गीता सुनते सुनते हम नरकवासी बन गए। क्यों क्यों नरकवासी बन गए? क्योंकि सुनाने वाले कोई भी स्वस्थिति में स्थित रहने वाले नहीं है, इसलिए हम नरकवासी बन जाते हैं। अभी बाप हमको स्वर्गवासी बनाते हैं, बाप है ही सदैव स्वस्थिति में रहने वाला, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। धड़ाक से सुनाना चाहिए, तो मुख से समझाते हो, गीता से ही राजयोग सिखाया जाता है, तुम राजाओं का राजा बन जाते हो। फिर जिन्होंने तुमको सुख दिया उनको भक्ति मार्ग में तुम याद करते हो, अभी तुमको समझ पड़ गई है बाप ने राजयोग सिखाया है, हम ही देवी देवता बने, जिनकी महिमा शुरू से चली आती है। पहले पहले होती है शिव की पूजा, फिर देवताओं की होती है, और पूजा भी तो नंबरवार होगी ना, नंबरवार पूज्य। ये ड्रामा बहुत अच्छा बना हुआ है, ये ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग समझाया जाता है, ये कोई ग्लानी नहीं की जाती है, ये तो अनार्य अविनाशी ड्रामा है, इसमें भगवान का पार्ट है। तो ऐसे थोड़े ही कहेंगे ड्रामा ठीक नहीं है, ये तो कब हंसी कुड़ी करते हैं, कैसा ड्रामा बना हुआ है, ऐसे ऐसे क्या पढ़ेंगे। तो ड्रामा तो अनाद अविनाशी है ना, भगवान हमको पढ़ाते हैं, अंदर में कितनी खुशी होती है, मुर्दे जैसी शिकल थोड़ी होनी चाहिए, कई मुर्दे भी बन पड़ते हैं, मुर्दा बनते हैं तो फार कति दे करके चले जाते हैं, शिकल ही मुरझाई हुई रहती है, तो फिर क्या देवता बनेंगे। प्रजा दास दासियां थर्ड क्लास प्रजा में चले जाते, वो भी आगे चल करके तुम साफ देखेंगे कौन क्या बनते हैं। जैसे राजा होता है वो काम ऐसे चलिए खड़िए कि शिकल नहीं देखेंगे, तुम्हारे में भी वह हालात हो जाएगी, फोर्थ क्लास को कब देखेंगे ही नहीं। यहां भी ऐसे तुम देखेंगे, फिर भी स्वर्ग की दासी बनना कोई कम नहीं है, यहां बाप तो आए हैं तुमको पढ़ाने के लिए, थोड़ा भी कोई पढ़ते हैं तो स्वर्गवासी होते हैं। जो भी भारतवासी हैं उनको स्वर्ग तो याद रहता ही है, कोई मरता है तो भी कहेंगे स्वर्गवासी हुआ। तो ये यादगार कहां की मनाते हैं, मरने वाला स्वर्ग में तो कोई जाता नहीं है, तो ये नरक ही दुनिया, ऐसे भी नहीं कि स्वर्ग कोई ऊपर है। फिर ऐसे क्यों कहते हैं जो मरा सो स्वर्गवासी हुआ, यहां संगम युग में जो जीते जी मरते हैं विकारों से देह अभिमान से, तो जीते जी स्वर्ग का अनुभव करते हैं, मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव करते हैं। इसलिए बाबा ने पर्चे भी छपवाए हैं, उन्हों को स्वर्ग और नरक का भी समझाना चाहिए। इस दुनिया में तो है ही नरक, तो नरक में ही पुनर्जन्म लेंगे ना, यहां मरेंगे तो स्वर्ग में जन्म कहां से ले लेंगे। नरक में मरने वाले नरक में जन्म लेते हैं, और स्वर्ग में शरीर छोड़ने वाले स्वर्ग में शरीर छोड़ते हैं तो स्वर्ग में जन्म लेते हैं, तो फिर स्वर्ग आवे कहां से, कैसे आवेगा है? जो जो स्वस्थिति में स्थित होते जाएंगे वो अपने वाइब्रेशन स्वतः ही बनाते जाएंगे, उनके वाइब्रेशन में कोई गलीज आत्मा प्रवेश नहीं कर सकती, संसर्ग संपर्क में आ ही नहीं सकती। तो ऐसे नहीं है कि पुनर्जन्म स्वर्ग में होगा, अभी तुम तो पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। इस युग की बड़ी भारी महिमा है। चार चार अड़सठ की वाणी का तीसरा पेज, अभी तुम जानते हो हम न नरक में है और न स्वर्ग में, अभी हम दोनों से ही ऊंचे हैं। ब्राह्मणों के लिए चोटी दिखाते हैं ना, इस समय बड़ा अच्छा है, जबकि हम बाप से पढ़ते हैं ऐसा लगता है बस बाप से हम पढ़ते ही रहें। फिर कभी ऐसे बाप थोड़े ही पढ़ावेंगे, वेद का बाप हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, ऐसा बाप तो कब नहीं मिलेगा। जिनका बाप के साथ लव होगा कहेंगे हम तो यहां ही रह जावे, हमें तो स्वर्ग भी नहीं चाहिए, हमको बस बाबा चाहिए। ये बाबा भी उस बाबा की महिमा करते हैं। कौन बाबा? किस बाबा की महिमा करते हैं? शिव बाबा की महिमा करते हैं, जानते हैं जो महिमा करते हैं, हैं? अच्छा, यह बाबा ब्रह्मा भी उस बाबा की महिमा करते हैं। किस बाबा की महिमा करते हैं? हैं? ये कि आज बार आने वाले का उन्हें पता था, भविष्य के लिए भविष्यवाणी कर दी कि जब वो भविष्य आवेगा तो ये बाबा, ये ब्रह्मा बाबा की सोल भी उस बाबा की महिमा करेगी। शिव बाबा जैसा ऊंचे ऊंचे रहम दिल कोई होता ही नहीं है, ऐसे बाप के साथ हम क्यों न रहें? यही वंडरफुल अवस्था है, जिस अवस्था में तुम हीरे जैसे बन जाते हो, ऐसी अवस्था स्वर्ग में भी नहीं होती है। अभी तुम ईश्वरीय संतान हो, फिर दैवी संतान बन जाएंगे, तो कौन सी संतान ऊंची हुई? देवताओं का ग्रेड तो कम हो जाता है, ईश्वर का ग्रेड तो बहुत ऊंचा है। अभी तुम पढ़ते हो और तुम ब्राह्मण पढ़ने वाले कितने थोड़े हो, दुनिया में तो देखो कितने ढेर मनुष्य हैं। भारतवासियों से भी क्रिश्चियन से जाति हो गए हैं, क्रिश्चियन मुसलमान आदि कितने ढेर हैं, तुम जानते हो। हम तो पढ़ करके फिर राजाई करने के लिए तैयार हो जाएंगे, इसको गुप्त नशा कहा जाता है। बाप समझाते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे आधा कल्प के पाप भस्म हो जाएंगे। रावण राज्य में तुमने पाप ही पाप किए हैं, पहला पाप तो है विकार में जाने का, बाप की याद से ही इन विकारों पर जीत पाने की ताकत मिलती है, परंतु अभी ये याद ही भूल जाते हैं। घड़ी घड़ी भले गीता तो पढ़ते हैं परंतु भगवान वाच किसको कहा जाता है वो पता ही नहीं है। अगर पता नहीं है तो जट ठहरे, पहले तुमको भी ये ख्याल थोड़े ही आता था क्या कि गीता का भगवान कौन है? पहले बेसिक में ये ख्याल आता था किसको समझते थे गीता का भगवान? है गीता का भगवान साकार में गीता ज्ञान देने वाला किसको समझते थे? ब्रह्मा को ही समझते थे। अब ब्रह्मा कहो कृष्ण कहो आत्मा तो एक ही हो गई, तो मुख से कहते कि गीता का ज्ञान कृष्ण ने नहीं दिया, और प्रैक्टिकल में क्या समझते कि कृष्ण और दादा लेखराज ब्रह्मा ने ही गीता का ज्ञान दिया, तो न खुद को बुद्धि में बैठता न दूसरों को बुद्धि में बैठता। अभी तो तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया है, भगवान ने राजयोग सिखाए, डबल सिर ताज बनाया है, सन्यासी भल गीता आदि सुनाते हैं परंतु वह डबल सिर ताज तो नहीं बनाते हैं। अभी तुमको स्मृति दिलाई जाती है और ये स्मृति आना तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं है, बाप ही पूछते हैं आगे कब मिले हो, ऐसी बात और कोई पूछ नहीं सकता, उनको पूछना आवेगा ही नहीं। बच्चियां कहती हैं बाबा हम 5000 वर्ष पहले आपसे मिले थे, मिले थे तो क्या लिया था? कहते हैं स्वर्ग का वर्षा लिया था, परंतु स्वर्ग के वर्षे में भी पद तो बहुत है ना, राजा रानी स्वर्ग के मालिक कहेंगे तो प्रजा नौकर चाकर भी स्वर्ग के मालिक होते हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा सब एक ही होंगे ना, पद तो नंबर वाली है। तो ये है सत्यनारायण की कथा, परंतु प्रजा दास दासियां आदि भी तो होते हैं ना, माला बनती है, फिर आधा कल्प बाद पवित्र राजा ही रहती नहीं, तुम इस पढ़ाई का 21 जन्म फल भोगते, फिर रावण राज्य शुरू होता है तो वो फल समाप्त हो जाता है, भक्ति शुरू हो जाती है, आगे चल करके जिन्होंने गफलत में आकर के शादी आदि की है वो भी सब आते रहेंगे। जो अभी मारते हैं वहां से ही खुशी से छुट्टी लेकर के आवेंगे, आते भी रहते हैं, तो इसमें भी योग बल चाहिए, जितना याद में तुम रहेंगे उतना ही बलवान बनते जाएंगे, उनको कशिश होगी, साधु लोग भी तो खींचते हैं ना, तो वो है भक्ति का बल जो कशिश करता है, भक्ति में कितना मस्त रहते हैं, भक्ति में बल है अल्पकाल का, उससे अल्पकाल का सुख मिलता है, और ज्ञान में बल है 21 जन्म सुख भोगने का। अब ये पुरानी दुनिया ही खत्म होनी है, ये तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है लक्ष्मी नारायण बनना, भारतवासियों को ऐसी राजधानी हम दिलाते हैं, इन देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है, ये भी तुम जानते हो आत्मा विनाशी है देह विनाशी है, आत्मा 84 जन्मों का पाठ बजाती है, बाप कहते हैं तुम अभी पाप आत्मा बन गए, फिर अभी पावन बनना है, मैं हूँ पतित पावन, मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, यही राजयोग है, बाकी जो कुछ सीखते हो वो तो सब भक्ति है। अभी वेद के बाप आकर के वर्षा देते हैं तो आकर के वर्षा लो, अभी सभी अगर आ जाएं तो रिवोल्यूशन हो जावे, ड्रामा ही बना हुआ है पीछे आने का, अभी नहीं, इस समय है रावण राज्य का पंप, बहुत धनवान हो गए हैं। रावण राज्य में भी धन का नशा बहुत चाहिए। कितने करोड़पति पद्मपति बन गए हैं। जब एकदम पूरा नरक बन जाता है तो फिर बाप आकर के कंट्रास्ट बताते हैं। बाप कोई बीच में नहीं आते हैं तो बच्चों को कितना प्यार से समझाते हैं, फिक्र की कोई बात नहीं है, तुम सभी को कुछ न कुछ फिक्र होगा। बल छोटा है फिर भी याद तो रहता है ना। बाबा को क्या याद है, बच्चों को पढ़ाना, क्योंकि बाप ज्ञान का सागर है, प्यार का सागर है, वो आकर के पढ़ाते हैं। तो तुमको प्यार का पुतला बना करके ही छोड़ूंगा। 4 अप्रैल 1968 की वाणी का चौथा पेज, भारत को स्वर्ग बना करके ही छोड़ूंगा, ये गारंटी करता हूं। बच्चे भी कहते हैं हम स्वर्ग की स्थापना करके ही छोड़ेंगे, श्रीमत पर सर्विस पर आराम थोड़े ही करना होता है। आगे चल करके तुम इतना बिजी हो जाएंगे जो बात मत पूछो। बहुत दुखी मनुष्य आवेंगे तुम्हारे पास। अभी तुम्हारी आत्मा को ज्ञान का तीसरा मित्र मिल गया है। आत्मा ही समझती है, हम इस शरीर द्वारा पढ़ते हैं, विश्व का राज्य लेते हैं, तो ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। बाप तो एविडेंट सर्वेंट है और है भी कितना साधारण, कितना बड़ा इम्तान है विश्व के मालिक बनने का। इसको कहेंगे रूहानी एजुकेशन। हमारी सारी रूहानी पंचायत है, ये रूहानी प्रिंसिपल सबसे बड़ा है। तुम रूहानी गवर्नमेंट के जैसे सभी मिनिस्टर्स हो, ये भी जानते हो सेकंड बाई सेकंड जो कुछ ड्रामा चलता है, जो भी तुम्हारी एक्ट चलती है बिल्कुल एक्यूरेट चलती है। इसलिए बाबा बेफिक्र बनाए देते हैं। तो पुरुषार्थ तो करना ही है, नहीं तो प्रारब्ध कैसे बनेगी। बाबा ने कहा है आत्मिक दृष्टि रखो, इस आत्मिक दृष्टि से ही तुम बच सकते हो। हम आत्माओं को पढ़ाता हूं, आत्मा ही सुनती है। कहते हैं भाई भाई हैं, बाप एक है, और जो भी 500 करोड़ आत्माएं हैं वो सभी की सदगति देने बाप आया हुआ है। धर्म अनुसार सभी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म था जिसको हैवन पैराडाइज कहते हैं, वो फिर से स्थापन करने आया हुआ। बाप कहते हैं अभी मुझे याद करो। नहीं तो गफलत में मुक्त अपनी तकदीर में लकीर लगाए देंगे। कहां भी जाओ बाप और चक्कर को याद करो। अगर बाप को भूले तो कच्चे पड़ जावेंगे, याद का अभ्यास करते करते पक्के हो जावेंगे। पवित्र तो बनना ही है। अच्छा आज भोग है, विश्व किशोर को आने के लिए बाबा ने निमंत्रण तो दे दिया है। ड्रामा के प्लान अनुसार सभी को बाप को याद प्यार देना। ड्रामा ही ड्रामा करते रहते, कदम कदम पर ड्रामा। ड्रामा के प्लान अनुसार निमंत्रण दे रहा हूं। किसको? एक साल पहले विश्वेश्वर भाई ने शरीर छोड़ा था 67 में, तो उनको आने का निमंत्रण दे रहा हूँ। उनको भी जाकर के कहेंगे बाबा ने तुम्हें बुलाया है, और क्या कहेंगे। आत्मा को बुलाया जाता है ड्रामानुसार, ऐसे नहीं कि शरीर कैसे निकल कर जाएंगे। शरीर से आत्मा निकल जाती है, ये ड्रामा में नूद है। इन साक्षात्कार की बातों से ज्ञान और योग का कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे मम्मा आती थी, तुमसे बातचीत आदि करती थी, ये भी आकर के बातचीत आदि कर सकते हैं। कौन? विश्वकिशोर घूम फिर सकते हैं, अपना अनुभव भी सुना सकते हैं, भोजन भी खा सकते हैं। कोई बात का रिस्पॉन्ड आदि ड्रामे में उनका देना होगा तो देगा। सिर्फ शरीर ही बदलता है, बाकी तो बात करने से ही समझ जाएंगे। उनकी आत्मा बोलती है, ये भी वंडरफुल बात। बाप का पढ़ाना और बच्चों का पढ़ना और ऊंच पद पाना, महत्व तो इन बातों को नहीं दिया जाता है। महत्व तो दिया जाता है याद और दैवी गुण को, तभी देवता बनेंगे। पुराना स्वभाव बदलना होता है, नहीं तो स्वभाव बस अपना पद भी भ्रष्ट कर देंगे। बच्चे जानते हो, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आत्मा को बुलाते हैं, आत्मा ही खाती पीती है, सारा काम शरीर द्वारा करती है, शरीर के कानों द्वारा सुनती है। आत्मा को ही पावन बनना होता है। घड़ी घड़ी देवान में आ जाते हैं, बाप कहते हैं आत्मा अभिमानी बनो, इस बात में बड़ी मेहनत है। अपन को शरीर समझना ये तो बड़ी भारी मूर्खता है। पहले तुम भी मूर्ख थे, अभी बाप तुमको समझदार बनाते हैं। तो तुम्हारी मुख्य है रूहानी पढ़ाई, बाकी ये सभी भी ड्रामा में पार्ट है, खेल पाल आदि का। अच्छा, मीठे मीठे शिकील दे बच्चों को रूहानी बाप व दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते।